पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आत्मकल्याण के कारणीभूत मोक्ष मार्ग जो होता है उसमें सम्यक्त्व की पात्रता प्रमुख पात्रता मानी जाती है। सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन के कारण से ही चारित्र सम्यक चारित्र बन जाता है। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां ज्ञान तो होता ही है, चारित्र हो ये नियम नहीं बनता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों हो सकते हैं किसी जीव के पास, पर उसके पास चारित्र हो ये नियम नहीं बनता। ऐसे जीवों को ही अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, जिसके पास सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है किंतु क्या नहीं है, चारित्र नहीं, यानी देशव्रत या महाव्रत इन दो में से कोई भी नहीं, उनको कहेंगे अविरत सम्यक दृष्टि। गृहस्थ और अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक जो संकल्पित होते हैं, आठ मूल गुणों का संकल्पी होते हैं, उनको तो कहेंगे अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक। और संकल्प के बिना ही सम्यक्त्व के रक्षक सम्यक्त्व के मूल लक्षण स्वरूप जो आठ मूल गुण हैं उनका संकल्प रहित भी पालन हो सकता है। ऐसा जीव भी सम्यक दृष्टि होता है, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे, अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ। एक गृहस्थ है और एक पाक्षिक श्रावक है, ये दोनों ही किस गुणस्थान में रहेंगे, चौथे गुणस्थान में रहेंगे। और यदि 11 प्रतिमाओं में से एक दो या कुछ प्रतिमाओं को ले लेते हैं या सभी प्रतिमाओं को ले लेते हैं तो गुणस्थान चेंज हो जाएगा। किस गुणस्थान में आएंगे, पांचवे गुणस्थान में आएंगे, चारित्रम खलु धम्मो। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है चारित्र ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। वह किस प्रकार का चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सहित, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित चारित्र ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। दीवाल में छेद करने के लिए, कील ठोकने के लिए एक मशीन आती है, देखा होगा आप लोगों ने। ड्रिलिंग मशीन, छेद कौन करता है? तो हम कहते हैं आगे का जो कील है वो छेद करता है। पर छेद करने में सहयोग कौन दे रहा है? मशीन। तो मुख्य पात्रता किसकी है? मशीन की है। मशीन है और छेद करने वाला कील नहीं है तो छेद नहीं निकाल सकते, और छेद निकाले बिना अपना काम होता नहीं। किसी चीज को वहां लटकाना है, कैसे लटकाएंगे? लाइट फिट करना है, कैसे करेंगे? तो अविरत सम्यक दृष्टि के पास मशीन तो है, ड्रिलिंग मशीन। अविरत सम्यक दृष्टि मशीन के समान है, और अनुवृत्ति तथा महावृत्ति ये दोनों ये किसके समान है? कील सहित मशीन के समान है। इसलिए चारित्तम खलु धम्मो, जिनेन्द्र भगवान ने कहा चारित्र ही निश्चय से धर्म है, चारित्र से ही छेद निकलता है, कर्म रूपी दीवाल को छेद करना है, उनको नष्ट भी करना है, उसमें कील ठोकना है। कौन सा कील ठोकना है? संयम का कील ठोकना है। संयम का ही कील ठोकना है। संयम का कील ठोकने से पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। इन दोनों के साथ यदि पंच पापों को त्याग कर देते हैं तो संयम आता है। वो भी कैसा? पंच पापों का त्याग, उनकी अपेक्षा रखते हुए त्याग करेंगे तो गुणस्थान आगे जाएगा नहीं। ये मुझे नहीं चाहिए, ये संकल्प पूर्वक जाना पड़ेगा। पंच पाप अभी भी नहीं चाहिए, भविष्य में भी नहीं चाहिए। अभी क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो केवल कर्म का नाश करना है, उससे मतलब है। कर्मों के नाश के लिए हमने पंच पाप त्यागा है, कर्मों की निर्जरा के लिए हमने पंच पाप त्याग दिया है। मेरा लक्ष्य कर्मों का नाश करना, मेरा लक्ष्य ये नहीं। ये पंच पाप त्याग रहे हैं तो बाद में मिले, ये परिग्रह त्याग रहे हैं, ये हिंसा त्याग रहे हैं, ये सत्य असत्य त्याग रहे हैं, इस अचौर को त्याग रहे हैं, तो ये बाद में देखेंगे, अपेक्षा नहीं रखते। ये अपेक्षा न रखना भाव संयम है, अपेक्षा न रखते हुए त्याग करना कौन सा संयम? भाव संयम। और त्यागना ये द्रव्य संयम है, वस्तु का त्याग द्रव्य संयम है, और वस्तु की इच्छा का त्याग भाव संयम है। और दीवाल में जो छेद बनता है वो दोनों संयम से बनता है, वहां भाव संयम भी चाहिए और द्रव्य संयम भी चाहिए। वस्तु का तो त्याग दिया है लेकिन भावों में इच्छा को नहीं त्यागा है, तो उससे क्या होगा? कील तो लगाया है लेकिन वो कील मजबूत नहीं। और लगाते ही कील ही टूट जाए, उस कील से छेद नहीं पड़ने वाला। तो कैसा कील चाहिए? मजबूत, उसको क्या बोलते हैं? उक वाला। उक क्या बोलते हैं उसको मराठी में? उक ही बोलते। उक वाला कील चाहिए। उक वाला कील, उसका स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है, खराब नहीं होता। पत्थर में भी छेद निकाल दे वो इतना मजबूत होता है, और होना ही चाहिए। तो उसमें दो ताकत होती है, एक तो वो कील है, लोहा ही है, लेकिन वो विशिष्ट लोहा है। उसको बार बार पानी में डुबोकर निकालकर तपाना डुबोना बार बार जिसका किया गया है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। कोई हथियार है, खड्ग है, इसके धार को बहुत समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उस वो धार जल्दी नष्ट न हो ऐसा करना चाहते हैं तो उसको बार बार तपाओ, बार बार पानी में डुबाओ। जितनी बार आप पानी में डुबोते हैं उतना वह कड़क हो जाता है, उसमें कड़कपन आता है, उसको उक वाला कहते हैं। और मटेरियल भी अच्छा मटेरियल यूज करते हैं उसको बनाते समय, उस तरह का वह कील होता है। तो उसमें दोनों प्रकार की शक्ति आ जाती है। लोहा जो है वह द्रव्य संयम के समान है, वो क्वालिटी अच्छी है। अनुव्रत की क्वालिटी से आप छेद नहीं निकाल सकते, अनुवृत्ति घाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा क्या? तो अनुवृत्त नहीं चलता। नहीं चलता, केवल ज्ञान प्राप्त करने तक काम में आएगा क्या अनुवृत्त? मैंने साक्षात केवल ज्ञान तो महाव्रत से ही होना है वो बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे समझेंगे तो अनुवृत्त तो हम नहीं लेंगे, फिर महाव्रत ले लो। अनुवृत्त जो है महाव्रत की ओर जाने के लिए साधन है, वो असली कील नहीं है वो। हाँ, कील बनाने का मटेरियल आ गया है, कील बना नहीं अभी। अब इस मटेरियल से कील बनाओगे, अनुवृत्त मटेरियल के समान है, लोहे का मटेरियल आ गया है, अब उससे कील बनाना है। अनुवृत्त का मतलब हम कील बनाने जा रहे हैं, मटेरियल लाए हैं, बस इतना ही है। महाव्रत का मतलब कील बन चुका है, अब छेद निकालना है। कील तैयार है, लगा करके मशीन को स्विच दबाना है और छेद निकालना शेष है। छेद पड़ गया तो कार्य सिद्धि हो गई, छेद पड़ गया ना तो केवल ज्ञान हो ही गया। वो जो जमीन में बोरिंग करते हैं, वो जो बोरिंग करने वाले वो पाइप रहते हैं, वो पाइप भी उक वाले होते हैं। वो जमीन में कठोर से कठोर पत्थर में भी छेद निकालते हैं, उक वाले होते हैं। छेद क्यों निकाल रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? पानी चाहते हैं। किस प्रकार का पानी? एकदम मीठा भी होना चाहिए और शीतल ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक जैसा होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। पानी है जमीन में, विश्वास है, इसलिए तो बोरिंग किया जा रहा है। विश्वास है कि पानी है, इसलिए हम विश्वास के साथ ही बोरिंग कर रहे हैं। अब पानी गिरता क्या नहीं गिरता, पानी लगता क्या नहीं लगता, ये किसी ने पूछा तो उस समय तुरंत कह देते, वो तो छोड़ दिया ना ऊपर, अपने पर नहीं लिया, किसी पर नहीं, ऊपर छोड़ दिया, वो तो भगवान के ऊपर, भगवान के भरोसे से निकाल रहे हैं, ऐसा कहता है। तो क्या भगवान पानी वहां पर जमा करेंगे जमीन में? ये भगवान का काम है? पानी लगना नहीं लगना भगवान का विषय है क्या? भगवान का विषय तो है ही नहीं। पानी हो तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसा जादू तो नहीं होता क्या, तुम भगवान की पूजा करके आ गए और भगवान देखेंगे और हम निकालेंगे? भगवान कहीं लाके डालते नहीं और कहीं हो तो निकालते नहीं। जहां लगना है वहां पर गायब करते हैं क्या? भगवान कोई जादूगर है क्या? भगवान जादूगर बन गए तो जादूगर में और भगवान में क्या अंतर? फिर इससे अच्छा है कि एक जादूगर को ले आओ, कुछ ऐसा जादू करो, मैं निकालता हूं, पानी आ जाना चाहिए। जादूगर कहता है जो जहां पानी होता है वहां मैं गायब नहीं कर सकता हूं, तो डाल कैसे सकूंगा? लेकिन आंख पर पट्टी बांधने का काम जरूर कर सकता हूं। आपको दिखेगा पानी नहीं है, लेकिन पानी रहेगा। आपको दिखेगा पानी है, लेकिन पानी नहीं दिखेगा। ऐसा जादू तो मैं कर सकता हूं, पानी होते हुए भी तुम्हें पानी नहीं दिखेगा, ऐसा कर सकता हूं, पर जो है उसको नहीं मिटा सकता। पानी यदि है तो मैं गायब करने वाला कौन? सृष्टि में पानी है, उसको मैं गायब नहीं कर सकता। जिसका अस्तित्व सृष्टि में होता है, उस अस्तित्व को कोई भगवान भी, कोई शक्ति भी खत्म नहीं कर सकता। सृष्टि सृष्टि है, उसमें जो ताकत है वो है ही, उसका विनाश नहीं होता। बोर निकालते हैं, हमारा लक्ष्य है पानी चाहिए, पानी की उपलब्धि के लिए बोर निकालते हैं। तो हम संयम धारण करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पानी, मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष तो उसको कहते हैं, आपने पानी भी, बोर भी निकाला, पानी भी लग गया और पानी पी लिया, ये कहते हैं कि इसको कहते हैं मोक्ष। पर मोक्ष से पहले आपको केवल ज्ञान होता रास्ते में, रास्ते में ये होता है। मोक्ष मिला नहीं, उससे पहले केवल ज्ञान मिल गया। बोरिंग करने वाला सबसे पहले पानी को पाता है क्या पानी को पीता है? पानी को पाता है। और बोरिंग करने वाला बोरिंग करते 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 बहुत गहराई में गया, पानी नहीं लग रहा है, अफसोस होगा क्या? नहीं, मेरे 10-20 हजार रुपए गायब, खराब हो गए, नुकसान हो गया। किसान दुखी होता, खेत में पानी पिलाने की और खेत में फसल उगाने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन पानी के लिए इतना प्रयत्न करता है, कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, भगवान के भरोसे से चलता है। पानी नहीं लगा तो कहता है भगवान क्या करेंगे इसमें, भगवान क्या करेंगे। पानी लग गया तो भगवान का नाम ले लेता कि भगवान ने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, नहीं लगा तो कहता है हमारे लिए पाप कर्म का उदय क्या करूं, दुर्भाग्य भाग्य मेरा नहीं है। पानी नहीं लगता है तो कर्म सिद्धांत याद आता, पर लग जाए तो भगवान के लिए श्रेय देते हैं, ऐसा होता है, ट्राय करके ऐसा ही होता है। किसी ने पूछा कैसे हो, बहुत अच्छा हूं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया तुम्हें, भगवान ने बहुत कुछ दिया, क्या क्या दिया, देने के लिए कब आए थे, किस तारीख को आए थे, भगवान के भरोसे पर भगवान ने दिया, ये सब कहना मिथ्या तो है, ये भी एक ग्रहित मिथ्या तो ही है। सभी लोग कहते हैं इसलिए हमने कहना सीख लिया, देखा देखी हुआ। सभी लोग बंगार देते हैं इसलिए हम भी बंगार देते हैं, देखा देखी सीखा है। आया कल के दिन है क्या, कल के दिन तो देखो प्रश्न ला करके रखने से पहले ही विचार करना चाहिए था, कल भी प्रश्न आया था और चौखे में भी पूछ रहे थे। मैं एक एक विषय के संबंध में कब तक कहूं। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ आप लोगों के हाथ में है, घर में है, उसमें 150 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक के दो दो लाइन या तीन तीन लाइन, अधिक से अधिक तीन तीन लाइन मूल श्लोक का मराठी में अनुवाद है या हिंदी में भी है। तीन तीन लाइन ही पढ़ लो जल्दी 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 एक दिन बैठ करके। कहीं भी आया हो कि बंगार देना जैन धर्म में है तो फिर कल के दिन जाना समाज मिल करके उधर। और रत्नगण श्रावकाचार्य में आया हो, 150 पद्य हैं, आज जाकर के पढ़ लेना, जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तुम्हारा काम तुम्हारा। कहीं भी आया हो तो मुझे आके बता देना महाराज इसमें आया है और कल हम जाएंगे ये करने के लिए, और आप भी उपदेश में बता देना कि रत्नगण श्रावकाचार में है ये और सभी लोग जाएं, तो कल के दिन मैं वहां जाने के लिए उपदेश दूंगा। लेकिन 150 पद्य हैं, चार चार लाइन हैं, रात भर बैठ जाना लेकिन खोज लेना, रात भर खोज लेना 150 पद्य में कहीं अगर ये आया तो कर लेना है। भगवान ने तो कहा 150 पद्य में जितना लिखा है उतना करना सम्यक है, बाकी शेष विषय को दिमाग में लेना मिथ्या तो है, एक्सटर्नल विषय अनावश्यक है। शंका समाधान हो गया, हो गया, 150 का समाधान है ये। देखो मूलाचार मुनियों के लिए लिखा, रत्नकरंडक श्रावकाचार श्रावकों के लिए लिखा, ये फालतू लिखा है क्या, उनको हमें पढ़ना चाहिए। उसमें जितना आता है उतना ही करना है, जो आया ही नहीं उसको बाहर का आया हुआ या पहले पासून का आया हुआ ये समझ करके चलना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रश्न उठा तो महाराज से पूछने की भी जरूरत नहीं कि महाराज वो करूं क्या नहीं, कल वो दिन आ रहा है, ये करूं क्या नहीं, कैसा करूं, पूछने की जरूरत ही नहीं, सीधा जिनवाणी में घुसना, 150 पद्यों से बातचीत करना, उसमें अगर है जो है उसको करना, जो नहीं है वो हमारा है ही नहीं, ये समझना। गुरु भी कहेंगे तो 150 से ही कहेंगे और आप भी पढ़ेंगे तो 150 से ही पढ़ेंगे। करना अपने को क्या है, 150 का ही करना है। हमको 400 मूलाचार लगभग 400 आगे पीछे लिखा है, गाथाएं हैं उसमें, हमको 400 में जो आया है उसको करना है। आपको केवल 150, ये घंटे में पढ़ के निकाल दोगे, हमको 2 दिन लगेंगे। मुनि महाराज भी ऐसा ही अपना जीवन बना लेते हैं, जिस जीवन को बनाने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है। भगवान ने कहा तुमको मूलाचार को छोड़कर नहीं जाना, तुमको रत्नगढ़ श्रावकाचार छोड़ करके नहीं जाना। बस जो भी क्वेश्चन या समस्या सामने आती है उसको किससे सलटाएं हम, 150 श्लोकों से उत्तर ढूंढना। श्रावकाचार तो मुनियों को ही पढ़ाना पड़ रहा है, ये आप लोगों का है, आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप लोगों को स्वाध्याय के लिए, आप लोगों को उपदेश के लिए, परस्पर में उपदेश करो इसका, श्रावक धर्म ये है ये नहीं है, इस प्रकार उसमें तो है ही। महाराजों को ही पढ़ाना पड़ रहा है, आपका ग्रंथ आप पढ़े, हमारा ग्रंथ हम पढ़ते हम चलते, आपका ग्रंथ आप पढ़े आप चले, लेकिन महाराज उसमें समझा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। ये समझाना क्या आवश्यक है, बहुत सरल ग्रंथ है, कहीं कठिनाई आती है तो बात अलग है, उसके लिए गुरु चाहिए, गुरु आवश्यक है, परंतु वो सरल ही है, उसमें जितना विषय लिखा हुआ है बिल्कुल सरल है। कोई शब्द कठिन पढ़ सकता है, एकाध अतिथि स्वामी भाग, महाराज स्वामी भाग यानी क्या, ये प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपके दैनिक आचार विचार में आप क्या करते क्या नहीं करते आपको मालूम है, और उन दैनिक आचार विचारों का वर्णन 150 पद्य में कहीं भी हो तो करना चाहिए, चाहे वो पहले पासुन का हो चाहे ना भी हो, तो उसको किया जा सकता है, लेकिन होना चाहिए 150 में, 150 में होना चाहिए। तो यही है, क्या करना है, 150 के अनुकूल करना है या जैसे गए साल किया था वैसा ही करना है, ये सोच लो। अपन को क्या करना है, यदि उसको नहीं करना है तो उस जगह दूसरी कर सकते हैं हम, जो सम्यक्त मार्ग में अनुकूल है, सम्यक्त का पोषक है। जिस समय में उधर जाते थे उसी समय में इकट्ठे हो जाओ, इतना बड़ा समोचरण लग गया है, अष्टक करो मिलकर के, वहां जाके लोक मूर्ता के पाप को सिर पर ले आते थे, यहां आके लोक शिकरस्थ आयतन की पूजा करके पुण्य को सिर पर ले जाएंगे। वही अच्छा है, लोक शिकरस्थ आयतन की पूजा करके पुण्य को सिर पर ले जाएंगे, वहां जाकर लोक मूर्ता करके मिथ्यात्व रूपी पाप कर्म को सिर पर ले आते थे, उल्टा पाप कर्म को ले आते थे। यहां पर ये करेंगे। अच्छा दूसरी बात ये, अब जहां तक वो वनस्पति है, वनस्पति लाते थे और कहते थे क्या उसको, सोना, वनस्पति सोना है, वनस्पति सोना है क्या, सोना, एक पत्ता दे रहे हैं सोना ले लो सोने के समान रहो, और ये मिथ्या तो करके हमेशा सोते रहो संसार में सोते रहो सोने के समान। असली तो है नहीं वो। अब आपके पास कोई आया और आपको दे रहा है, आप लोगे नहीं, नहीं लेते हैं तो दिमाग बिगाड़ दे, दिमाग खाएगा वो, अरे क्या पागल हो गए आज आप कुछ भी कहेगा, आप उसमें शर्मिंदा होंगे, आप उसे लज्जा के साथ देखेंगे, ऐसा तो करना नहीं है अपने को, सहजता से देखो उनको, ये क्या है हम कर रहे हैं, ये क्या है, कभी विचार किया इस पर क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछो, उस तत्संबंधी चर्चा करो, तत्संबंधी गृहस्थ धर्म में ये है क्या, हमारे शास्त्रों में है क्या, आदान प्रदान, क्वेश्चन उत्तर का आदान प्रदान हो, और ये यदि हमारे धर्म में नहीं है, या धर्म में ये भी नहीं कहा कि ये लोक व्यवहार में करना चाहिए, तो फिर हमारे लिए आवश्यक क्या है, इस बात की चर्चा भी करो, और यदि देते हो तो कोई बात नहीं लाओ, लेकिन इस पर जरूर विचार करना, लाओ सोना तुम्हारा क्या है, लेकिन ये असली सोना है क्या, पूछो उनसे, देना ही हो तो सोना दो, ये हमको धोखा क्यों दे रहे देना ही हो तो सोना दो, आप पत्ते दे रहे हैं, ये पत्ता एकेंद्री जीव जिसकी हत्या करके, जिसके प्राणों का घात करके, और देते समय उस प्राणघात शरीर के अचित जीव को, सचित जीव को, उसको दूसरों को देकर के सोना कह रहे, जीव को भी दुख दिया और दुख देकर के उसका शरीर तुमने दूसरे के दान में दे दिया और सोना कह दिया, झूठ बोल दिया, अब वो भी ले रहा है हम भी दे रहे हैं, अनादिकाल से चल रहा है, इस पर विचार नहीं किया गया, क्या है ये, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि किसी जीव को दुख दो और उसके तन को सोने के रूप में दान दो, खुशी मनाओ एक दिन, हिंसा का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने कहीं भी नहीं दिया, और ये अनावश्यक, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, जो नहीं जानता है उनका ले लो, चर्चा करो ये क्या है, थोड़ा चिंतनशील हो जाओ, चिंतन करने के लिए बाध्य करो उसको, तो वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने और कुछ भी कह बैठेगा, क्या बैठेगा कि इतने सभी लोग पागल हैं क्या, यही कहेगा बिल्कुल कहेगा, उसको मुस्कुराते हुए कहो तो इतने लोग पागल हैं कि शान्या है, वही तो चिंतन करना है यही कहो, ये लोग पागल हैं कि शान्या है, यही तो चिंतन करना है हाँ यही भी कहेगा, इस बरस क्या हो गया आपको, क्या हो गया देखो बहुत अच्छा है, यदि मतलब पैसे को मतलब ये सोने को देना, आदान प्रदान करना, ये कोई गलत बात नहीं है, आप दूसरे को खुशी में पैसा देते हैं तो गलत है क्या, खुशी से दे रहे, वो भी आपको खुशी से कुछ दे रहा है, लेते हैं, आपस में आदान प्रदान होता है। लेकिन ये पत्ते को देने की क्या जरूरत है? जीव हत्या ये धर्म नहीं है। मंदिर में अहिंसक हो गए, जीव हत्या समझ में आई, और फिर ये वनस्पति लुटाना और उसको शाखा शाखा का शाखा काट के लाते हैं। आज पाप कर्म का उदय ही समझो, जो बंगार का पेड़ होता है, सोने का पेड़ होता है, वो सब कप रहे होंगे। आज का दिन आ गया, हम लोगों को काटने आएंगे लोग। साल भर में एक दिन ऐसा दिन हो जिस दिन हम आपके परिवार पर संकट आने वाला है, तो आपको चार दिन पहला कैसे लगेगा? आपके बच्चों को, आपको, परिवार को कैसे लगेगा? ये खतरनाक व्यक्ति आता है, वो हमको ले जाता है, काट के दूसरों को दे देता है हाथ में, कैसा लगेगा? ऐसा ही सोचना चाहिए दूसरों के संबंध में। दूसरों का सुख दुख हमारे सुख दुख के समान उसके सुख दुख होते। वो एक इंद्रिय जीव अपना परिवार बसा लिया है, आनंद का जीवन, हरा भरा जीवन जी रहे हैं, और उनके जीवन में जाकर के हमने डिस्टर्ब किया, तो क्या पुण्य लगा? ये कौन सा कर्म धर्म करने जा रहे हैं? कहां कहां है ये? जिनेंद्र भगवान तो नहीं कह सकते और हम भी नहीं कह सकते। हाँ, भगवान को भी देते हैं हम। अब हमारे पंचम काल के भगवान मुंह को केवली हैं, बोलते नहीं, लेकिन गुरु तो बोलते हैं, छोड़ते नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो भगवान के सामने? हमारे सामने? हमारे सामने भी ले आओगे? अब देख लेता हूँ कौन कौन लेता। मैं तो बोलूंगा मैं तो बोलूंगा, मौन नहीं रहूंगा। हमारे भगवान नहीं बोलते, मूक हैं। मैं तो बोलूंगा, ये क्या चढ़ा रहे तुम, ठहरा दूंगा तुमको। मैं तो पूछूंगा किस लिए आए थे? सोना देने के लिए। झूठ क्यों बोलते? सोना कहाँ है बताओ, ये पत्ता मुझे नहीं चाहिए, सोना लेके आओ, ओरिजिनल सोना लेके आओ। अच्छा, ओरिजिनल सोना नहीं भी देना है तो कम से कम इतना तो सोचो कि ये पर जीवों को दुख दे करके उसको सोना समझकर उसको देने की अपेक्षा कम से कम इतना कर लेते, पैसे के सिक्के ले आते, चारन्नी आठन्नी रुपये, और उसको ये सोने का कलर देते। समोसन में दिया है ये सोने का सिक्का, सोना ले, सोने का सिक्का ले और सोने की तरह रहो, ये भी कर लेते तो ये बहुत अच्छा। अहिंसा मार्ग है ये, मिथ्या तो है ये लेकिन अहिंसा मार्ग होगा, कम से कम जीव बचेंगे। एक पत्ते में वनस्पति का एक जीवों की संख्या अनंत बताई है, और तुमने कितने लोगों को दे दिया दिन भर? एक एक पत्ते में अनंत जीव, तो 100 लोगों को दिया है तो 100 अनंत जीवों का घात किया है। कौन सा पुण्य कमाया? क्या सिखाने गए दूसरे को? हत्या सिखाने गए क्या? इसको लेकर के सोने की तरह रहो, या इसको लेकर के सोते रहो संसार में, जैसे मैं हिंसक हूं ऐसे तुम भी हिंसक बनना, इसको देते रहना। पहले पासून की बात है ये, इसको छोड़ना नहीं। ये बताने गए या क्या? अहिंसा परमो धर्म, तुम अहिंसक रहो मैं भी अहिंसक रहता हूं। पैसा दो, कोई सोना दे रहा है तो अठन्नी दो, पुण्य लगेगा। वो नकली सोना दे रहा है तो तुम असली सोना दो। और कैसा सोना? सही सही सोना, ऐसा। आगे पीछे उसको सोना बनाओ और सोना ही दो। अगर उसको लगा दिया तो चलेगा ही नहीं। वो दुकान में देते समय पहुंच के दो और कल के दिन देते समय लगा के दो, मैं सोना दे रहा हूं। हिंसा नहीं करना। किसी भी क्षेत्र में हिंसा धर्म के रूप में मान्य नहीं है। हिंसा मान्य नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, कुछ भी करो लेकिन अहिंसा पूर्वक करो। कोई जबरदस्त आपसे सोना मांगता है तो आप पैसा दो। एक चॉकलेट तो खा लेगा बेचारा उसको लेके, और तुम्हारे पत्ते से क्या खाएगा? चॉकलेट आएगा क्या? आज ऐसा ही करना। एक नए पैसे की भी सिक्का हो, पहले चलता था जो, वो भी यदि घर में रखा हो तो उसको दो, लेकिन पत्ता नहीं देना। और पैसे भी देते समय ये कह देना, ये क्यों किया जाता है जरा विचार कर लेना, किस धर्म में ऐसा आया, ये कहां से परंपरा चली, इसका जरा खोजबीन कर लेना। एक निबंध लिख करके भेज देना मेरे पास, तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारे चिंतन का एक निबंध भेजना, ताकि इसकी सच्चाई को हम जान सके और अगले साल भी ऐसा ही कंटिन्यू कर सके। कितना सच कितना झूठ, खोजना तो चाहिए। पहले पासून, कितनी सारी बातें ऐसी हैं, ये पहले पासून की बातें लोक मूर्ता की कोटि में आते हैं, और लोक मूर्ता सम्यक दर्शन का दोष है, सम्यक्त को मलिन करता है ये। इस साल दूसरे के सामने पागल नहीं बनना, उनको पागल बना देना। वो पत्ता दे रहा है तो पत्ता मुझे नहीं चाहिए, पैसा दो। कहो उनसे, पत्ता हम स्वीकार नहीं करते, तुम एक सिक्का दो, मैं भी एक सिक्का देता हूं। और वो सिक्का अगर उसने एक रुपये का दिया तो दो सिक्का तुम दो रुपये का दे दो, और कह देना दो रुपये लेकर के सोने की तरह जिंदगी बनाना, ये दो सिक्के में मेरे जादू हैं, जिंदगी में शांति का जीवन जीना, अहिंसा का जीवन जीना, लोक व्यवहार का सही जीवन जीना, ये सिक्का सोने का सिक्का मान करके ले चलना। जाओ, दूसरे जीवों को घात करना ही नहीं, पत्ता नहीं देना। बस इस साल मैं इतना ही बता रहा हूं, सिक्का देना लेकिन पत्ता नहीं देना। वो भी चिंतनशील रहना, और सिक्का देना भी कहां से आया ये भी खोजना। सिक्का देना तो आज से ही शुरू होगा, कहां से आया कैसे खोजेंगे। चक्रवर्ती दिग्विजय करके लौटा था, लौटने के बाद खुशी में किमिच्छिक दान बांटा था प्रजा को, जो मांगता है वही, ये चाहिए ना तुम्हें ये ले लो, सोने की तरह तुम्हारे जीवन जिंदगी रहे, सुखपूर्वक रहे, सुखी रहो, और क्या चाहिए? नहीं नहीं इतना ही चाहिए, तो जाओ ले जाओ। क्या दिया था? दान में धन दिया था, किमिचे का दान दिया था, वो जो मांगता है मुंह से जो निकला वो चक्रवर्ती ने दे दिया। चक्रवर्ती किमिचे का दान देता, किमिच्छिक मतलब जो इच्छा करता है सामने वाला, उसको कुछ भी इच्छा कर सकता है उसको। तो आप चक्रवर्ती हैं क्या? चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवर्ती ने दिया था उस दिन को मनाया जा रहा है, ये है। चक्रवर्ती ने ऐसा दान दिया था, उस दान के दिन को, किमिच्छिक दान को मनाया जा रहा है। आप चक्रवर्ती नहीं है तो इसको मनाने की क्या जरूरत है? इसको इसको मनाते मनाते महाभारत हो गए, यहाँ हमारा सम्यक दर्शन तो गायब हो गया और ये आरूढ़ हो गया। आज दान दिया जाता है, सही पूछो तो ये है, क्या दान दिया जाता है? दुखी को दुख दूर जिस वस्तु से होता है, उस वस्तु को देकर के दुखी के दुख को दूर करने का आज का दिन है। पास में भिखारी जा रहा है, उसको नहीं दे रहा है सोना, और व्यर्थ के लोगों को सोना दे रहा है, और सोने देने के लिए घर घर जा रहे हैं। चक्रवर्ती क्या घर घर गया था? आज मेरा खुशी का दिन है, दिग्विजयी होकर के लौटा हूं, मैं किमिच्छिक दान देने वाला हूं, जो दुखी मनुष्य मेरे द्वार पर आएगा उनके लिए इच्छित वस्तु का दान मिलेगा, घोषणा कर दी, और उस घोषणा के अनुरूप उन्होंने दान दे दिया। वो दिन है कल का दिन, और उसको किस रूढ़ी के रूप में हमने मान लिया? जीवों को दुख देने के रूप में। देखो कैसी मिथ्यात्व बुद्धि ऐसी होती, सोचने तक ख्याल तक नहीं आता कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं। पत्ते को दे दिया, वो पत्ते को तोड़ करके देने की परंपरा कब से और कैसे शुरू हो गई पता तक नहीं, हो सकता है वैदिक परंपरा का छाप सब जगह फैल गया हो, वहां पर कुछ भी चलते हैं, किसी भी टाइम में कोई भी रूढ़िवाद एक बार चल पड़ा तो चल पड़ा, वो इतना जल्दी फैलता है, इतना जल्दी फैलता है जैसा कि वो चिकनगुनिया फैलता है। हाँ, चिकनगुनिया बहुत जल्दी, इधर का मच्छर इधर इनको काट करके इधर काटा तो दोनों को हो जाएगा। एक ने पत्ता दे दिया तो उसको देखा देखे सब ने दे दिया, चिकनगुनिया तो है, अनुकरण कर लिया। पत्ता नहीं देना, सिक्का देना, कम से कम दान तो हो। चक्रवर्ती ने क्या किया था उसका अनुकरण तो हो। हम किमिच्छिक दान नहीं दे सकते सही, लेकिन 2 रुपए एक सिक्के का दान देते तो सिक्के के दान से कोई एक दिन का दुख दूर नहीं हो सकता। आज सिक्के का क्या कीमत है, 1 रुपए का क्या कीमत है, 1 कप चाय भी नहीं आता। चाय की क्या कीमत है, 1 कप की मुझे मालूम नहीं, 2 रुपए तो कम से कम 2 रुपए तो देना आज। देना हो तो कम से कम 2 रुपए देना, या तो 1 कप चाय पिला लेना, चाय नहीं पिलाना, 1 कप दूध पिला लेना, चाय भी ठीक नहीं। नहीं, अपन भी जब छोटे थे उस समय आज के दिन यही करते थे, हमको विचार तो आता था कि पत्ता क्यों दिया जाता है और इसको सोना क्यों बोला जाता है और उस पेड़ को सोने का पेड़ क्यों नहीं कहा जाता है, सोने का तो होता नहीं, और ये तो हरा हरा दिखता है, सोने की जैसे चमकता भी नहीं। इसी पेड़ को इन्होंने सोने का पेड़ क्यों नाम रखा? विचार तो आता था, लेकिन किससे पूछे? सब वही वही। किसी से पूछे तो ये कहता, चुपचाप उसका नाम पहले से ही सोने का पेड़ है। चुप बैठ, वो पहले से ही सोने का पेड़ है, ऐसा जवाब मिलता। किससे पूछे? पूछने की कोई साधन नहीं था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कोई दुनिया में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था, अब मुझे अपने आप मिल गया शास्त्र पढ़ने से, जिनवाणी पढ़ने से। कहीं भी ये जिनवाणी में लिखा हो तो बताओ कि ये फलाना पेड़ सोने का पेड़ होता है। अगर वो सोने का पेड़ होता तो सोने के पेड़ दुनिया में बचते ही नहीं थे आज तक, असल में सोने के होते तो। कब की खत्म होती? अब इस पत्ते को देना किसने शुरू किया, इसका कोई अंत नहीं, खोज नहीं सकते। वो व्यक्ति को ढूंढे कैसे? कहीं शास्त्र में लिखा हो कि फलाने व्यक्ति ने फलाने तारीख पर शुरू किया, ऐसा तो लिखा हुआ मिलेगा नहीं। तो कल के दिन क्या करना? बिल्कुल पूजा करो, पुण्य कमाओ, कल के दिन पूजा करो, हर रोज पूजा करो। प्रवचन तो है ही, प्रवचन है ही। कल के कौन कौन से प्रश्न थे? एक दो और लिख करके रखा था, वो हमारे पास नहीं रहा। करुणा दान, हाँ बिल्कुल, कल का दिन वही दान, वही दिन है। चक्रवर्ती ने जो काम किया था वो करना, करुणा दान। देखो कल के दिन तो ऐसा करो, अस्पताल जाओ, कोई बीमार हो उसके लिए फल फूल बांटो, संतोना देव, उसके लिए दवाई पहुंचा दो, ये तो हो। चक्रवर्ती नहीं है तो एक दवाई पुड़िया तो दे सकते हो ना। दुखी जीवों पर कृपा करना, चक्रवर्ती ने दुखी जीवों पर कृपा नहीं किया था, खुशी में सबके लिए कुछ न कुछ बांटा था, जिसने उनसे पाया वो भी खुशी में था। क्योंकि हम आज एक ऐसे राजा को पाकर खुशी का अनुभव करते हैं जिसने 6 खंड को जीत करके अपने आर्यखंड में आए। राजा जब जीत के आता है तो प्रजा में खुशी छा जाती है, खुशी छा गई थी। तो ऐसा कौन राजा है जो आज जीत करके आया हो और आप बांट रहे हो? कोई नहीं। अब इसको मनाओ या ना मनाओ, सिर्फ इतना याद रखना पर्याप्त है कि आज चक्रवर्ती लौट करके आए थे और उसने ऐसा किया था। जीत के आए थे वो, क्या जीत के आए? 6 खंडों को जीता, विजयी बने। ये जीतना क्या चीज है? ये परिग्रह को तो बढ़ाना है। राज्य का लोभ था, मैं चक्रवर्ती, मेरे पास अपार पुण्य राशि, इस पुण्य के बल पर जाऊंगा, मैं चक्र रत्न को लेकर के जाऊंगा, जो नहीं मानेगा ये तमाम करेगा काम, जो मान लेगा समर्पण करेगा, उसके लिए वरदान सिद्ध होगा ये चक्र रत्न, जीवन प्राण रक्षा का कारण बनेगा। दिग्विजय करते करते 5 मिलेच्छखंड और 1 आर्यखंड, 6 खंडों का विजय होकर के लौटे थे, इस खुशी का दिन था। तो कल खुशी मनाओ, एक दुखी जीव को देख करके खुशी मनाओ। क्या देकर? उसके लिए औषधि देकर, कुछ भी दे, तुम्हारी शक्ति अनुसार तुम दान दो। दो लोगों को घर में लाकर भोजन कराओ, चलेगा। आसपास के चार सहधर्मियों को पकड़ के ले आओ, आओ खुशी से हम बैठ के आज भोजन करेंगे। आर्यखंड में आज स्मृति का दिन है चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती ने जैसे प्रजा को खुशी रखा था, हम आपस में अपनी खुशी को बांटे। आइए आप हमारे यहां खाइए, शाम को हम आपके यहां आते हैं, खुशी से रहेंगे। खुशी बांटने का दिन है और खुशी बांटना परिग्रह के माध्यम से होता है गृहस्थ का और मुनि का। हमको कहां है? कोई मुनि गए थे चक्रवर्ती के नीचे एक दान दे रहा है, दौड़ के चले गए और उनका दान ले लिया? मुनि नहीं जाते। मुनि पड़गाने खड़ा था, आज दिग्विजय करके लौटा हूं, आज के दिन मेरे घर में किसी मुनि का अगर दान हो गया तो मेरा दिग्विजय सफल हो जाएगा, बहुत खुशी हो जाएगी। उन्होंने आज के दिन तो सारे मुनि हमारे दरबार में आ जाए और मैं सभी मुनियों को भोजन करा दूं तो भी कम है। मैं सामान्य लोगों को किमिचिक दान दे रहा हूं तो मुनि आ जाए तो फिर तो हमारे भाग्य खुल गए। चक्रवर्ती के सदा धार्मिक भाव रहते थे। सोना देने से पहले सुपात्र को दान देना पहली खुशी का खुशी की बात है। सोना तो प्रजा के लिए, पर प्रजा के बीच में खुशी मनाने से पूर्व सच्चे देवशास्त्र गुरु जो आयतन कहलाते हैं, उन आयतनों को अपने बीच में लेकर उनके लिए दान आदि का विचार आज करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु शास्त्र दान। देखो समोचरण की रचना हो गई, कितना आनंद आया। तुम लोगों ने कितने लोगों को आनंद बांटा। जो लोग आए यही कहते चले गए, ऐसा समोचरण हमने कहीं नहीं देखा, नया देख रहे हैं हम। हाँ? खुशी को बांटा क्या? नहीं बांटा तो ये खुशी को बांटना क्या इसके बिना हुआ? ऐसा कुछ काम करो, आज का कल का दिन बहुत अच्छा है, दान देने के लिए मौका है। क्या जीवों की हत्या कर रहे हो? एक इंद्रिय जीव पत्ता उसको सोना मान करके बांट रहे हो। कल के दिन ऐसा दान करो जिस दान से लोग आपके खुशी के निमित्त को देख करके जिंदगी में भूल न सके, हमेशा याद आता रहे वो दृश्य। एक बार देखने के बाद हमेशा सपने में भी वो समोचरण आता रहे। ऐसा समोचरण की एक रचना करोगे और उसको धर्म प्रभावना का निमित्त बनाओगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कल के दिन। उसके लिए दान राशि निकालो, इससे बढ़िया बनाया जाए। और इस खुशी को दुनिया लूटेगी। समोचरण के सानिध्य में बैठ करके जो पूजन करेगा वो धन्य हो जाएगा। उसका मिथ्यात्व जादू हो जाएगा उसके लिए। यहाँ आकर के दर्शन करने जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का समोसरण का दर्शन करने वाला दर्शन करते करते सम्यक दृष्टि हो सकता है। इस वैभव को देख करके इस पर श्रद्धा आ जाती है, साक्षात चतुर्थ काल का दृश्य सामने आता है और जिनेन्द्र भगवान का वैभव ऐसा ही होता होगा क्या, दंग रह जाता है देख करके और इस सम्यक दर्शन का कारण बनता है। बहुत अच्छा निमित्त मिला है, बहुत अच्छा निमित्त मिला है कल का दिन दान देने के लिए। खुशी से दान राशि निकालो और एक ऐसा समोसरण की रचना करो, तुम पेट वड़वा वाले संपन्न हो, कोई कमी नहीं आप लोगों के पास, दुनिया को खुशी बांट सकते हो, दुनिया को धर्म बांट सकते हो, अहिंसा का संदेश भेज सकते हो, शक्ति है, सहयोग दो, इससे अच्छा समोसरण। आप लोग बैठ करके पुष्प वृष्टि करो, प्रदक्षिणा देते देते विमान में बैठ करके पुष्प वृष्टि करने लायक एक समोसरण बन जाए तो क्या नुकसान होगा? कितनी खुशी होगी, यही देख करके इतनी खुशी लूट लिया लोगों ने, कल के दिन इससे अच्छा कोई बन गया तो कितनी खुशी को बांटोगे? और याददाश्त रहेगा, दसरा कल दसरा दिन है ना, हाँ, दसरे के दिन हमने ऐसा किमिचिक दान किया था, ऐसा उत्कृष्ट दान दिया था जो हमारे जीवन में नहीं किया था, ऐसा दान अपनी शक्ति को देखकर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दान राशि निकालो। और फिर देखो पेट वड़गांव का नाम रोशन हो जाएगा कि ऐसा समोसन कैसे बनाया इन लोगों ने और इसको सब जगह उपयोग में लाओ। जहां पंच कल्याणक होते हैं विदाउट समोसरण के पंच कल्याणक होते हैं, सुरों का सूखा लगता है, जहां पंच कल्याणक हो रहा हो वहां जाकर के लगाओ, ये असली काम है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और कराने का काम है। और फिर ये तो अपना केवल निर्देशन हो सकता है, करना तो आप लोगों को, हमारा मार्गदर्शन हो सकता है, उपदेश हो सकता है, किंतु करना तो आप लोगों को। मेरे पास तो परिग्रह पैसा है ही नहीं और जो परिग्रह है पैसा भी तुम्हारा रहेगा और जिससे ये समोसरण है, समोसरण परिग्रह भी हम रख नहीं सकते, हम एक छोटी सी मूर्ति भी नहीं रख सकते साथ में, साधु तो निर्ग्रंथ है, हम कुछ नहीं दे सकते, न मूर्ति दे सकते न मूर्ति के लिए पैसा दे सकते, पर इसका प्रचार प्रसार आज दुनिया में आवश्यक है क्या नहीं? और ये कौन करेगा, किसका धर्म है ये? श्रावक करेगा और इसका उपयोग बहुत होगा। फोल्डिंग सिस्टम समोसरण, सब जगह विहार करने वाला फोल्डिंग सिस्टम समोसरण, कहीं भी एक घंटे में जोड़ो और एक घंटे में खोल करके वो करो, बहुत धर्म की प्रभावना होगी इससे। मन लगा के तैयार करो, एक समोसरण ऐसा तैयार करो कि पेट गढ़ वड़गांव का नाम सब जगह चमक जाए कि इन्होंने कैसा दिमाग लगा करके ऐसा बना दिया। एमपी का एक व्यक्ति आया था, वो कह रहा था महाराज इसका मैं शूटिंग करके ले जाऊंगा और एमपी में भी मैं ऐसा एक समोसरण बनवाऊंगा। मन मन रम जाता है। जो भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाता है, बाहर जाने का मन नहीं होता। आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ? शाम को जब आरती करते, जब यहाँ पर भगवान को देखते हुए 5 मिनट के लिए बैठते, कितनी शांति मिलती है। ये ऐसा होना चाहिए। धर्म की प्रभावना, धर्म की प्रभावना के लिए दान राशि निकालो। कल दशहरे का दिन है, दीपावली के दिन भी लक्ष्मी पूजा, धन की पूजा नहीं की जाती, धन को दान में निकाला जाता है। धन को दान में निकाला जाता है और अच्छा काम, ऐसा धार्मिक काम किया जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते। अपने पास अगर धन होता तो बहुत दे देते, किमिचिक दान देते हम, लेकिन परिग्रह नहीं है ना अपने पास, नहीं तो बहुत कुछ करते। मन में ऐसा आता है कि ऐसा कोई अपने पास चमत्कार होता या जादू होता, साक्षात भगवान को भी साक्षात बिठा देते यहां। लेकिन कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसा हम लोगों को रास्ता बता दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम दे नहीं पाओगे, देने के मामले में जीरो रहोगे, उपदेश ही केवल दोगे। समोचरण क्या है? ये उपदेश तो दे सकते हैं। अब उस उपदेश को सुन करके तुमने नक्शा बना ली, ऐसा होता है क्या महाराज? ऐसा होता है क्या महाराज? नक्शा के आधार से तुम बनाओ। हम नक्शा दे सकते हैं और नक्शा वाला शास्त्र भी दे सकते हैं। आचार्यों ने शास्त्र लिख करके रखा है, समोचरण का लिख करके रखा है, उसको पढ़ो और वैसा ही बनाओ। उसमें जो चीज, एक एक चीज का वर्णन आया है, सबको करने का, चाहे करोड़ रुपए खर्च आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें एक एक चीजें जो भी शास्त्र में वर्णन आ रहा है, ऐसा समोचरण की रचना जो कहीं नहीं हुआ हो, कितना अच्छा रहेगा। और ये काम आप लोग कर सकते, समर्थ हैं। हाथी में बैठकर जाने के लिए बोली धड़ाधड़ लेते हैं लोग। लेते कि नहीं लेते? 30,000 तक चला जाता है, लाखों तक चला जाता है। जो दान राशि देगा ना, भगवान के सामने विमान में बिठा करके उनकी पुष्प पुष्टि होगी। कितना सौभाग्य है ये। हाथी पर बैठकर गांव में घूमने की अपेक्षा विमान में बैठकर भगवान की प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य, वो ज्यादा है कि वो ज्यादा है? तो ऐसा विमान बनाओ जो वास्तव में देव विमान जैसा लगे। ऐसा भगवान को बनाओ जो वास्तव में भगवान जैसे ही साक्षात लग रहे हैं, समोचरण में बैठे हैं, ऐसी रचना करो। लेकिन ये सोने के सिक्के से ही बनेगा। हाँ, कल देना हो तो असली सोना निकालो कितना है। असली सोना दे दो, भगवान के सामने रखो। हे भगवान, आपको साक्षात देखने के लिए हम सोने का त्याग कर रहे हैं, और इस सोने की महिमा 3 लोक में फैले। मेरा 1 तोला सोना ले लो भगवान, आप साक्षात दिखो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, एक बार दर्शन दो, साक्षात दिखो, साकार हो जाओ। मैं सोना दे रहा हूं। सोना देकर भगवान को देखने की चेष्टा करो तो जीवन सफल होगा। पत्ता देकर सोने की तरह रहो, कितना मिथ्या है। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। शंका दोष प्रथम दोष कहलाता है सम्यक्तो का। शंका शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य लेना, शंका यानी प्रश्न भी होता है, शंका यानी किसी कोई चीज पूछना ऐसा भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ संदर्भ में शंका का तात्पर्य क्या है, संशय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में किसी भी प्रकार से संशय न करने का नाम शंका है। कांक्षा दोष ये क्या है, कांक्षा दोष भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का कार्य नहीं करना। धर्म का कार्य भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं करना, यह कांक्षा दोष निकांक्षित गुण है, और करना ये कांक्षा दोष है। ये गुण प्राप्त होता है, कांक्षा नहीं करने से गुण प्राप्त होता है। ये विचिकित्सा दोष, विचिकित्सा दोष रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग व मार्गी से घृणा करना। रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग से और मार्गी से घृणा करना दोष है। मार्ग से का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये मार्ग है, और सम्यक्तो को सुन करके मन में धारण करने के भाव न आना, या बहुत कठिन है, या ऐसे विचार आना कि जैन धर्म बहुत कठिन होता है, हाँ जैन धर्म बहुत कठिन होता है, वो तो सम्यक तो पकड़ने को कहता है, मिथ्या तो छोड़ने को कहता है, ये है जिगुप्सा। क्या बोला, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग से और मार्गी से घृणा करना। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपने आत्मा के लिए कल्याणकारी है, और कल्याणकारी के संबंध में ज्यादा चिंतन करने के बजाय ऐसा चिंतन करना जो जैन धर्म बहुत कठिन होता है, ऐसे रटते बैठा है, ये घृणा है, अपने ही आत्मधर्म के प्रति घृणा हुआ। अपने प्रति घृणा करने वाला परमात्मा बनेगा क्या, खुद को चमकाएगा क्या, खुद को भगवान बना सकता है क्या? और ये तीनों धर्म अपने हैं आत्मा के, जैसे अपने घर का धन होता है ना, आप कितना संभाल के रखते हैं, ऐसे संभाल के रखना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसी संपत्ति, ऐसा धन है जो अपने ही घर का धन है, इसको घृणा नहीं किया जाता, इससे उदास उपेक्षा नहीं की जाती, इसकी इससे उदास नहीं हुआ जाता, इसकी रक्षा में सतत लगे रहना पड़ता है। ये असली धन है, बाहर का धन तो नकली धन है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र असली धन है, असली संपत्ति है, उसकी रक्षा का जितना चिंतन करो वो है सम्यक्तों का आदर, वो घृणा नहीं कहलाएगा। फिर आदर, अपने आत्म धर्म के प्रति ही हम घृणा करेंगे तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा, और आदर करेंगे तो हाँ निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होगा, निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होगा। तो निर्विचिकित्सा अंग सम्यक दृष्टि का, वो सम्यक्तो का अंग है। जैसे शरीर के आठ अंग होते हैं, दो पांव, दो हाथ, एक छाती, एक पीठ, एक मस्तक और एक जंघा, आठ आठ अंग होते हैं। आठ अंग के बिना मनुष्य नहीं होता। आप अपने आठ अंगों को कितनी सार संभाल करते हैं, कितनी सुरक्षित रखते हैं, बैठना है, उठना है, तो कहीं कांटा तो नहीं, कहीं पत्थर तो नहीं, चलते हैं तो सुरक्षा करते हैं, शरीर के अंगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। वैसे सम्यक तो के भी 8 अंग हैं, उन 8ों दोषों से बचकर चलने वाला 8 अंग का पालन करता है। पहला अंग, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में संशय नहीं करना, ये पहला अंग हुआ। दूसरा अंग, इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं करना। धर्म करना, लेकिन धर्म के फल में भौतिक सुख को वरदान में मांगना नहीं, मांगना नहीं, भौतिक सुख को नहीं मांगना। धर्म कर रहे हो ना, धर्म करने से पुण्य लगता ही है, पुण्य ऑटोमेटिक सुख देता ही है, अपेक्षा नहीं करना। वो अपेक्षा क्योंकि अपेक्षा करना व्यर्थ है, वो जब अपने आप मिल रहा है तो अपेक्षा क्यों कर रहे हो। जब रास्ता चलते हैं, रास्ता चल करके कोल्हापुर का लाइन पकड़ते हैं तो पेट वड़गांव तो छूटता ही है क्या, फिर भी साथ चलता है। फिर रास्ता जब चलना संकल्प कर लिया, कोल्हापुर जाना जब संकल्प हुआ, तो पेट वड़गांव छोड़ रहा हूं, पेट वड़गांव छोड़ रहा हूं, ये क्यों रट रहे हो, फालतू है कि फालतू है क्या नहीं, ये पेट वड़गांव छोड़ू ये फालतू है क्या नहीं, फालतू, फालतू काम ही मिथ्यात्व का काम होता है। भौतिक सुख को मांगने की जरूरत नहीं, वो बिन मांगे मिलने वाले हैं। धर्म करते जाओ, धर्म पुण्य बंध का कारण निमित्त बनता ही है, और उस पुण्य बंध से तुमको क्या मिलने वाला है, पुण्य का फल भौतिक सुख ही है, मोक्ष तो है नहीं, भौतिक सुख है। भौतिक सुख मतलब शरीर और धन संपत्ति इत्यादि तक वो सीमित है, शरीर भी देता है, शरीर भी संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, ये शरीर भी एक भौतिक संपत्ति है और धन भी भौतिक संपत्ति है, परिवार भी भौतिक संपत्ति है। भौतिक संपत्ति तो है शरीर, तो उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कौन दे रहा है, पुण्य ही तो दे रहा है। धर्म करेगा तो वज्रषभ नारासनन बनेगा, दृढ़ शरीर दृढ़ काया, धर्म से भी बन सकता है। मंदकशाही हो गए, बंध गया, तो ये शरीर संपत्ति, अच्छी संपत्ति, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर की दृढ़ता, धर्म करने साधना करने लायक शरीर की प्राप्ति जो हुई, वह किसकी देन, धर्म की देन, धर्म से भी मिलता है। तो धर्म करते हुए व्यक्ति को क्या मांगने से ही मिलता है, मुझे शरीर मिले, मुझे संपत्ति मिले, रटना पड़ता है बार बार, नहीं है, ये रटने की जरूरत ही नहीं। आप किसी के यहां सर्विस कर रहे हैं तो पगार मांगना पड़ता है, लास्ट डे महीने के अंत में मांगना पड़ता है, अपने आप आता है क्या, नहीं, या मोह से मनी ऑर्डर से आ जाता है, पगार चेक मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता, मांगना व्यर्थ है, अपने आप आता है। जैसे सर्विस का धन अपने आप आता है, धर्म करने वाले व्यक्ति का पुण्य अपने आप आता है, तो पुण्य अपने आप आता है तो पुण्य का फल भी अपने आप आता है, मांगना नहीं पड़ता। उस फल में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। दूध में एक बूंद इच्छा की खटाई डालने के समान है, तो फटता है दूध। हाँ, इच्छा नहीं रखना, यही कहा है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल निशंक बना रहे हैं, निष्कांक्षित बना रहे हैं, निकांक्षित बना रहे हैं। कांक्षा को ही त्यागो, धर्म करो लेकिन कांक्षा मत करो, वो तो संपत्ति तो धर्म की छांव है, लक्ष्मी तो धर्म की छाया है, धर्म करते रहो लक्ष्मी साथ चलती है, लक्ष्मी साथ चलती है। लेकिन अज्ञानी जीवों को ज्ञान यही इसी का ज्ञान, सही ज्ञान, पूरा ज्ञान न होने से वो क्या सोचता है, मांगने से ही मिलता है, वो मांगने से ही मिलता है, मांगे बिना कैसे मिलेगा ऐसा सोचता है वो। लेकिन वो गलत है, मांगना व्यर्थ है, पूरा व्यर्थ है। मांगने से एक बूंद की खटाई तुमने डाल दी, वो पुण्य के फल में कमी आएगी। अब इच्छा शक्ति से पाप आता है क्या पुण्य? भोग सामग्री की इच्छा करना ये पाप है क्या पुण्य? तो परिणामों में पाप है, तो परिणामों में पाप बुद्धि रहते हुए पुण्य का आश्रय होता है क्या? नहीं होता। परिणामों में पाप बुद्धि रहते समय पुण्य बंद नहीं होता, और परिणामों में पुण्य परिणाम रहते हुए पाप बंद नहीं होता। और पुण्य परिणाम क्या है? इच्छा से रहित रखना अपनी आत्मा को, यही पुण्य बुद्धि है। उसमें जरा भी खटाई नहीं, इच्छा की खटाई आ गई तो पुण्य में कमी आएगी, इच्छा की खटाई बिल्कुल नहीं है। ये निर्दोष पुण्य कमाना हो तो इच्छा छोड़ करके प्योर धर्म, ये निकांक्षित धर्म करने वाला निर्दोष पुण्य कमाता है, पुण्यानुबंधी पुण्य कमाता है। और इच्छा सहित वाला क्या कमाता है? पापानुबंधी पुण्य कमाता है, यानी पाप की बूंद और पुण्य भी, दोनों है, दूध भी है और एक एक बूंद की खटाई वो भी है, दही मिलेगा। और दही खाने वाला पहलवान नहीं बनता, दूध को बिगाड़ करके विकार कर विकृत करके खा रहा है, पहलवान नहीं बनेगा। आज इतना ही। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख